सभी भक्तों में केवल पृथ्वी लोक पे ही नहीं, सारे ब्रह्मांड में सब भक्तों का एक विशेष उत्साह होता है। ये पूरा यूनिवर्सल सेलिब्रेशन होता है। श्रीमद् भागवतम में आपको प्राप्त होता है कि किस तरह से जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उसके पहले देवताओं गर्भस्तुति किया था। कृष्ण प्रवेश किए थे देवकी के गर्भ में और सब देवता लोग आकर के बहुत सुंदर स्तुति किया था कृष्ण की। जैसे हमने पहले चर्चा की थी, भगवान ने स्वयं ही कहा था कि देवताओं को, क्या आप लोग जाओ, मेरे आविर्भाव होने से पहले कुछ लोगों को पहले अपीयर करवा था। तो भगवान ने पहले से सबको ये निर्देश कर दिया था, ब्रह्मा जी को, सबको, कि वो प्रकट होने वाले हैं। और जब भगवान प्रकट हुए थे देवकी के गर्भ में, तो जब कंस का राज्य था तो यज्ञ में अग्नि नहीं होता था, ब्राह्मण दुखी रहते थे, पेड़ फुल फल नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण का गर्भ में प्रवेश हुआ, देवकी के गर्भ में, तो सब चीज़ अपने आप बदलने लगा। नदियों में स्वच्छ जल का प्रवाह हुआ, सारे पुष्प उद्यान में सब पुष्प भरे हुए थे, अग्नि अपने आप प्रकट होने लगते थे यज्ञ में, ब्राह्मण सब बड़े प्रसन्न रहते थे। तो ये भगवान के प्रकट्य का असर है, क्योंकि भगवान आनंद के स्रोत है, है ना। कई बार ऐसा होता है लोगों को कि अपने आप मन से बिना कोई कारण से ही दुखी रहते हैं, बिना कोई कारण, इसमें कारण नहीं होता कोई, फिर भी वो दुखी रहता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, कुछ अमंगल होता है अपने आप। जैसे मुझे स्मरण है कि जब ये अर्थक्वेक हुआ था, तो 2001 की बात कर रहा हूँ, 2001 की, तो उसके अगले दिन, अर्थक्वेक के अगले दिन, सभी कई भक्तों का एक मत आया था, कई भक्तों, हम सब भक्तों के साथ में थे, कई भक्तों का यही मत था कि कोई अच्छा नहीं लग रहा है। कई भक्तों ने मुझे कहा था कि मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये, लेकिन जब भगवान प्रकट होने वाले थे तो सबको अंदर से हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, और उनको ही नहीं पता था ये क्यों प्रसन्न हो रहे, एक विशेष प्रकार का उल्लास सबके हृदय में था। ग्रहों का जो नक्षत्र का जो राजा माना जाता है, वो रोहिणी नक्षत्र आकाश में स्थित हुआ था, अपने आप सारे ग्रह सेट हो गए, द बेस्ट वन, स्वयं भगवान प्रकट होने वाले थे। तो कृष्ण का प्राकट्य जब होता है, भगवान स्वयं पहले बता चुके हैं, भगवद गीता में हम सुने हैं कि भगवान कहते हैं कि उन्हें हमारी तरह जन्म नहीं लेना पड़ता, माँ के गर्भ में 9 महीना रह करके शीर्षासन करो, पांव नीचे माथा ऊपर, एक ही स्थान पे पड़े रहे, इस तरह से भगवान का जन्म नहीं होता। और भौतिक विश्व में जब बच्चे का जन्म होता है, मनुष्य का, तो उसको धक्के शरीर में से धक्का मार के निकाला जाता है, माता का शरीर से, वो प्रकृति का ऐसा रचना है कि उसको धक्का मार के बाहर निकाला जाता है शरीर में से, वायु के माध्यम से। और जब वो पूरा निकलता है शरीर में से, जन्म लेता है, तो बड़ा कष्ट अनुभव करता है, दुखी होता है और रोता है, क्योंकि ये दुखालय महसूस वगैरह है। तो ये प्रूव करके देता है कि ये आते ही उसको पहले रोना पड़ता है, हमें रोता है यार, नहीं रोएगा तो उसको रुलाया जाएगा और नाम ये दिया जाएगा चेक करने के लिए कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं। लेकिन हालांकि ये कष्ट का संसार है, यहाँ पर कष्ट ही कष्ट है, तो उसको जन्म से जन्म लेते ही उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बालक घुंघराले बाल, सुंदर आभूषण, मुख में स्माइल और पीताम्बर पहन करके प्रकट हुआ हो। आज तक कोई ऐसा बच्चा जन्म नहीं हुआ। लेकिन ये कृष्ण जब प्रकट हुए तो प्रसन्न होकर के पूरे आभूषणों के साथ पीताम्बर पहन करके प्रकट हुए थे, है ना, हंसते हुए। तो इसलिए कृष्ण का जन्म भगवान कहते हैं कि मुझे कोई भौतिक फोर्स या बल की आवश्यकता नहीं जन्म लेने के लिए। संभवामी आत्ममाया, भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ अपनी आत्ममाया, अपनी इच्छा से, मुझे कोई प्रकट नहीं करवा सकता, कोई आदेश नहीं कर सकता, है ना। भगवान है तो दिखाओ, क्यों आएंगे तुम्हारे सामने। प्रभुपाद से कृष्ण डज नॉट अपीयर टू रास्कल लाइक यू, यू नो व्हाई शुड कृष्ण अपीयर टू यू नो ऑल यू नो नॉनसेंस पीपल लाइक अस, व्हाई शुड कृष्ण अपीयर। भगवान कहते हैं कि मैं, मूर्ख लोग मेरा उपहास, मेरी अवज्ञा करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता। हालांकि जब दुर्योधन भगवान के सामने था फिर भी भगवान को पहचान नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल, तो इसलिए भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, उनको कोई बल या उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ही इज गॉड। और जब वो प्रकट होते हैं तो आत्ममाया शब्द का दूसरा एक अर्थ ये भी होता है, माया शब्द का संस्कृत का एक अर्थ होता है कृपा। तो भगवान अपनी कृपा देने के लिए प्रकट होते हैं, जस्ट फॉर मर्सी, कृपा। तो ये विशेष कृपा करके भगवान जब प्रकट करते हैं उसके लिए क्या कहा गया है, भक्तिवान ठाकुर क्या कहते हैं, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोयलो सुविस्तार। जीवेर कारण आसिया प्रपंचे, जीवों की, यू नो, जीवेर कारण आसिया प्रपंचे, जीवों के कल्याण के हेतु भगवान इस भूमि पर प्रकट होते हैं और लीला प्रस्तुत करते हैं। लीला कोयलो सुविस्तार, लीला प्रकट करते हैं। जब यहाँ पर भगवान प्रकट लीला प्रकट करते हैं तो उन लीलाओं का हम श्रवणम और कीर्तनम करते हैं। स्वयं भगवान लीला प्रकट करके हमें उद्धार करते हैं, हमारा रक्षा करते हैं। इसलिए इन लीलाओं को सुनना चाहिए, इन लीलाओं को बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं, अधन जता न करी धन त्या गिनो, गौर कीर्तन रसे मगन न होनो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अधने जता न करी धन त्यागिनो, हम और सारी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं जिसमें कृष्ण नहीं है, उस बात में हमारी रुचि बड़ी तीव्र होती है। लेकिन जब कृष्ण की बात आती है जिसमें एक्चुअली आनंद प्राप्त होता है, उस बात को हम नहीं सुनते। अब सोचिए, जय अभी पिछले संडे या उसके पहले शायद मैं जब मंदिर में जब प्रवचन हो रहा था तो मैंने पूछा सब लोगों को कि कृष्ण लीला सुनने में किन भक्तों को आनंद आता है। सब ने हाथ उठा दिया, हमें बड़ा अच्छा लगता है कृष्ण की कथा सुनने में। और ऐसे देखा जाए तो सच बात है ना, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। कृष्ण ने कहीं इसकी मटकी फोड़ी है, कभी किसका मक्खन चुराया, कभी इसको परेशान किया है, कभी इसको उद्धार किया, इसको कृपा किया, ना। तो ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, भगवान की लीला है भी बड़ी मधुर। तो सुनने में अगर आपको इतना आनंद आ रहा है तो फिर इसको सुनते क्यों नहीं है। मैं प्रश्न पूछ रहा था सब भक्तों को कि अगर यही बात है कि अगर आनंद आ रहा है तो फिर सुनते क्यों नहीं है, क्या समस्या है। हाँ प्रभु जी कुछ तक ठीक है, अभी रोज रोज क्या, हाँ ये प्रॉब्लम है। कृष्ण लीला रोज क्यों सुनना है भाई, आपको सुखी रोज क्यों होना है। रोज सुख करके गए, सुखी रोज होके क्या होता है। हाँ कुछ जगह पर ऐसा मार प्रभुपाद दृष्टि से प्रभुपाद कहते थे कि विदेशों में कैसा होता है, मंडे टू फ्राइडे गधे की तरह काम करो और फिर आपको दो दिन मिलता है सैटरडे संडे जिसमें जितना कमाए सब खर्चा कर डालो है ना, और उसमें भोग करो जितना हो सके उतना भोग करो ना? और फिर कन्फेस करके आ जाओ कि मैंने दो दिन में बहुत सारे पाप किए, आई मीन पूरे वीक में बहुत सारे पाप किए, फिर मंडे से वापस साइकिल शुरू। लेकिन जहाँ पर सुख प्राप्त हो रहा है तो वहाँ दुख क्यों चाहिए आपको, ये समस्या है। सो यू आर यूज ब्रॉडबैंड, यूज ब्रॉडबैंड। सो कभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कृष्णा का जो भौम वृंदावन है, यहाँ का जो वृंदावन है उसको भौम वृंदावन बोलते हैं, तो भौम वृंदावन में आपको आनंद आता है, अच्छा लगता है ना आपको बारावन में, है ना। पिछली बार आप सब भक्तों ने बारावन के नाम बता रहे थे एक करके, है ना। आप में से किसी ने कहा सब देखा है ना, आप सारे देखे बारावन याद पूरा देखा है सब, हाँ ठीक है, लेकिन पूरा दर्शन सबका हुआ है ना। और किसी भक्तों ने 12 से कम और 6 से ज़्यादा वनों का दर्शन किया हो, ऐसे कितने भक्त हैं 12 वन से कम और 6 वन से ज़्यादा दर्शन किए हो आपने। ओके फिर 6 से कम लेकिन वृंदावन से ज़्यादा, ऐसे कितने, एक से अधिक, अच्छा। और केवल किसी ने केवल वृंदावन देखा हो, ऐसे कितने, अच्छा। तो ये जो 12 वन है वो बड़े ही रसमय है, बड़े ही आनंददायक है, उसमें बड़ा आनंद होता है। कृष्ण स्वयं भी, जैसे हम पिछली बार आपको बता रहे थे कि कृष्ण जब छोटे बच्चे थे पौगंड लीला में, तो पौगंड लीला में कृष्ण को इतना संतोष नहीं हो रहा था कृष्ण को, बच्चों को गई है तो देते नहीं थे चराने के लिए, बछड़े मिलते थे चराने के लिए। अभी बछड़े को तो दूर नहीं ले जा सकते ना, बछड़े को तो आसपास में ही रखना पड़ता है ना। तो बछड़े जब बछड़े को चरा करके बाद में जब भगवान गईये को चराने के लिए तैयार हुए थे, तब हमने जैसे पिछली बार बताया था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गईये को चराने से कृष्ण को एक और फायदा था। पहले सबसे पहले तो गईये क्यों चराने का हठ किया था भगवान ने, वो हमने आपको पीछे बताया था, गईये चराने का हठ क्यों किया था भगवान ने,
उनको 12 वनों में सब जगह पे लीला करना था,
पूरी ब्रजभूमि में चलना था, उनको 12 वनों में जाना था, बोलिए वृंदावन के आसपास घूम के क्या करना है, पूरे 84 कोस में जाना है, 12 वनों में जाना था। और 12 वनों में जनरली कृष्ण का ये रूटीन था कि सुबह निकल जाने का वनों की ओर और शाम को आते थे। तो आप जस्ट सोचो कि कृष्णा कितना आनंद का अनुभव करते होंगे कि वृंदावन में ये 84 कोस जो है ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल में प्रतिदिन जाना होता उनके अपने प्रिय मित्रों के साथ, उनकी प्रिय गैयों के साथ, और पूरा दिन इस प्रकार से विहार होता है, जैसे आप लोग कभी कभी पिकनिक करते हो ना, है ना, सब फ्रेंड्स मिल करके कभी आप जाते हो कहीं दूर, और उस समय क्या होता है पिकनिक का अर्थ होता है कि एक्स्ट्रा कोई काम नहीं होता है उस दिन, है ना। पिकनिक का अर्थ ही होता है पिकनिक, क्या पूरा दिन आप निकल जाते हो सुबह से और मित्रों के साथ एंजॉय करते हो, भोजन लेते हो, एंटरटेनमेंट करते हो, राइट, यही होता है पिकनिक। तो कृष्णा रोज पिकनिक करते थे, एवरी डे कृष्ण पिकनिक करते थे। इट्स ओके इफ इट डजंट वर्क, लीव इट। सो कृष्ण प्रतिदिन पिकनिक किया करते थे, प्रतिदिन। कितना साल रहे ब्रज में? 11 साल। कृष्ण 11 साल ब्रज में रहे, और 11 साल में बचपन के कुछ 5 साल, 4-5 साल दूर दूर नहीं गए, लेकिन जाते तो थे रोज। फिर भी अगर आप पौगंड छोड़ दो तो किशोर लीला में भी 6 साल प्रतिदिन पिकनिक किया, एवरी सिंगल डे पिकनिक, रोज 84 कोस में जाते थे। सो पिछली बार हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से पिछली बार हमने आपको क्या, आई एम फीलिंग लिटिल हॉट, कैन बी लिटिल कोल्डर, पिछली बार हमने आपको क्या बताया था बताइए। बताइए बताइए, पिछली बार हमने आपको क्या बताया था? बोलिए, याद ही नहीं किसी को?
अभी वे हमने अपने कृष्ण भगवान द्वारा भी गोकुल होना था।
हाँ, 84 कोस का
जिदु तो कहता है हम जोड़े जाओ।
अच्छा,
टाइम मान ये टाइम सर भोजन प्रसाद
खोड़ा हो जाए मेरे।
और
फॉर्चुनेट ऑफ वृंदावन
क्या था? और
भगवान ऐश्वर्या
और कुछ तो कृष्ण बलराम का स्तुति कर रहे थे। कुछ वैष्णव आचार्य हमें बताते हैं कि कृष्ण बलराम का स्तुति इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अपना स्तुति थोड़ी करेंगे, इधर लिख कृष्ण अपना स्तुति क्यों करेंगे, कृष्ण स्वयं है तो स्वयं वही भगवान, लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ही क्या कहेंगे आप उसको, संस्कारी है। जब हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अपना स्तुति कौन करता है,
जिसका कोई स्तुति नहीं करता है
जिसकी स्तुति करने वाला बच्चा ही नहीं है कोई, कोई उसको कहता ही नहीं हाँ आप बहुत अच्छे हो, क्या बात है प्रभु जी, आप क्या प्रवचन देते हो, आप क्या कीर्तन गाते हो, आपका जवाब नहीं, ऐसा बोलने वाला कोई बचा ही नहीं अब, इसलिए वो खुद ना खुद अपनी स्तुति करता रहता है। तो इसलिए भगवान को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। क्या चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं? जब कभी भी अगर आप ये कहोगे यू नो आई एम द बेस्ट मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, कृष्ण नेवर लाइक्स दैट। हल्का सा भी अगर आपको थोड़ा सा भी अभिमान होगा ये कि हाँ मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, अगर मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ लेकिन इससे तो अच्छा हूँ इससे तो मैं अच्छा ही हूँ, फिर भी भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो तो विनम्रता का पालन करना पड़ेगा, विनम्रता बहुत ही आवश्यक है। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में चीख चीख कर कहते हैं, चीख चीख कर, यू नो, पूरे नगाड़े लगा कर जोर जोर से, यू नो, सुनो सुनो सुनो, अगर तुम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो तो त्रिनादपि सुनी चैन वाला जो श्लोक है उसको कंठी बनाकर बांध के पहनो, और कुछ नहीं हो सकता आपसे तो चलेगा, केवल ये त्रिनादपि श्लोक जो है इसका पालन करो बस, इसका शुरुआत करो, अगर नहीं हो रहा है तो शुरुआत करो। क्या है इसका अर्थ, त्रिनादपि का अर्थ क्या है, वृक्ष घास के जितने तीन के तीन का जो होता है उससे भी अधिक अपने आप को तुच्छ मानना, जेन्युइनली, हाँ, दिखाने के लिए नहीं। अभी मुझे किसी ने एक आर्टिकल भेजा था, विनम्रता का अभिमान क्या होता है, व्हाट इज द प्राउड ऑफ बीइंग हम्बल, कई बार किसी को विनम्रता का अभिमान है, मैं कितना हम्बल हूँ, मैं बहुत हम्बल हूँ। अभी इसमें भी अभिमान लेगा, घास का तिनका हो, मैं ऊपर पर्वत के ऊपर का तिनका हूँ, तुम पर्वत के नीचे का तिनका हो, मैं तुमसे ज़्यादा महान हूँ, हालांकि मैं तिनका हूँ फिर भी महान हूँ। तो त्रिनादपि दूसरा है सुनिचेना, सुनिचेना का अर्थ क्या है, त्रिनादपि सुनिचे तररपि, तररपि सहिष्णुना, तररपि सहिष्णुना का अर्थ क्या है, हाँ, हम लास्ट टाइम वृक्ष की बात कर रहे थे, क्योंकि बलराम जी के लिए जब बलराम जी का स्तुति कृष्ण कर रहे थे तो उन्होंने अलग अलग लोगों का उपमा दिया था, आई मीन उपमा नहीं, बता रहे थे कि करके वृंदावन के, एक्चुअली हमारे संतों ने इसको बताया है कि ये जो कृष्णा ने बलराम का जो स्तुति किया था उसमें उन्होंने अलग अलग लोगों का महिमा बताया था, लेकिन एक रूप से देखा जाए तो वो वृंदावन में जो वृक्ष है वो कौन है, वो भी तो भक्त है ना, फिर जो मयूर है वो कौन है, वो भी तो भक्त है, तो वृंदावन में जो कोई भी है सभी तो भक्त है, अर्थात कृष्णा बलराम को वृंदावन के अलग अलग लोगों का महिमा बताकर वैष्णवों की महिमा बता रहे थे, भक्तों का महिमा बता रहे थे कि भक्त कैसे होते हैं। जैसे वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया वृक्ष का, ये वृक्ष जो है वो आपका चिंता, आपसे अटैच्ड है बलराम जी, आपका बड़ा, आपको बड़ा आदर करते हैं, वेलकमिंग करते हैं, स्वागत करते हैं आपका, आपको पुष्प देते हैं, आपको फल देते हैं, झुके हुए हैं, चाहते हैं कि आप उनका स्पर्श करो, इसलिए आपके मार्ग में बीच में आते हैं जानबूझकर के, अपने अपने पत्ते आपके मार्ग में बीच में, ताकि आप उनको स्पर्श करते हुए जाओ। फिर भगवान कहते हैं कि ये वृक्ष जो है ये हो सकता है कि किसी अपराध के कारण, ऐसे जैसे मानो प्रतीत हो रहा है कि वृक्ष भगवान बलराम जी को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने किसी जन्म में कोई अपराध किया होगा इसलिए हमें वृक्ष बनना पड़ा, और इसलिए हम आपके साथ विहार नहीं कर रहे, बाकी सब जब आपके उनके करीब जाते हो तो आप उनको उनको आपकी संगति मिलती है, लेकिन जैसे आप उनसे दूर चले जाते हो तो आपके पीछे पीछे आपके साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए ज़रूर किसी न किसी प्रकार का कोई अपराध किया होगा पूर्व जन्म में, इसलिए ये समस्या हो रही है, ऐसा भगवान बता रहे थे बलराम जी को, इसलिए आपसे वो क्षमा याचना कर रहे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। फिर बाद में भगवान कहा कि नहीं, ऐसा भले कैसा भी हो लेकिन ये वृक्ष तो वृंदावन के है इसलिए वो आपके भक्त है, आपके भक्त होने के कारण भी अपने आप को अपराधी बता रहे हैं, आप सोचो किस प्रकार का भक्त होता है, वैष्णव का ये आचरण होता है। कि हालांकि उसका कोई अपराध नहीं होता है, फिर भी वो अपने आप को बड़ा तुच्छ, बड़ा नीच मानता है। जैसे हरिदास ठाकुर, है ना, हरिदास ठाकुर क्या मानते थे अपने आप को, कि उनका जन्म हुआ है म्लेच्छ कुल में, म्लेच्छ खानदान में। सनातन गोस्वामी क्या कहते थे अपने आप को, कि संगति के कारण अब मैं म्लेच्छ से भी पतित हो गया हूँ। तो जगन्नाथ के राजमार्ग पे नहीं जाते थे। आप में से किसी ने ऐसा कभी प्रयास भी सोचा भी क्या कि हम जगन्नाथ के राजमार्ग पे अब नहीं जाएंगे? क्योंकि वो विनम्रता अभी हमारे हृदय में है ही नहीं, और ये जो विनम्रता होती है वो आर्टिफिशियल नहीं होती है, जेन्युइन होती है, दिखावे के लिए नहीं होती। क्या आज दिखाया फिर कल तो वापस आते जैसे जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे, इस तरह का नहीं होता ये, इट्स नॉट आर्टिफिशियल। तो ये वृक्ष जो है वो सिखाते हैं कि किस तरह से भक्तों को झुकना, विनम्र होना। भंवरे क्या करते थे, भंवरे बोलते थे, गाते थे, भंवरे गुणगान गाते थे। भंवरे को क्या मिला था, एक तो गाने का मिला था और एक नाच नृत्य करते, भंवरे नृत्य भी करते थे। और भंवरे मदान हो गए थे, कैसे, वृंदावन की जो दिव्य पुष्प है उसकी खुशबू से भंवरे इतने उल्लासित हो गए थे कि गाते रहते थे। अभी मैं आपको बता रहा था कि जब भगवान की लीला आपको सुनने को मिलती है तो बोलने को मिलती है, तो और सब कचरा क्यों बोलना है, यही बात बताओ। बाकी सब चीज़ों का बात करके क्या, उसको क्या बोलते हैं, वो मेंढक होता है ना, मेंढक, तो वो बोलता है तो उसके वो क्या करता है, बोल करके किसको आमंत्रण कर देता है,
सांप
को आमंत्रण देता है। तो उसका मेंढक की तरह बोलने जैसा होता है, पूरा दिन बोलता है। आप देखो बोलने वाले लोग की कोई कमी है क्या, बोलते ही रहते, पता नहीं बोलते ही रहते हैं, चपड़ चपड़ चपड़, कुछ ना कुछ चाहिए कुछ बोलने के लिए, उसे अनलिमिटेड सब्जेक्ट, लोगों को बोलना है, बोलना अच्छा लगता है लोगों को, तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा बोलनी चाहिए। ये सब तो यू नो कौवे भी बोलते, तो बोलने वाले तो कौवे भी है। और कुछ हमारे मायावादी लोग कहते हैं बोलने का बंद, मौन, यू नो मौन ही बाबा है, मौन ही बाबा, बोलना मौन क्या, मौन रहने से क्या फ़ायदा, भगवान का गुणगान नहीं करोगे, मौन रहोगे तो क्या, वो तो कुत्ते भी मौन रहते हैं, यू नो बिल्लियाँ भी मौन रहती है, उनको वो भी भगवान का गुणगान नहीं करते, तो मौन रह के क्या फ़ायदा, भगवान का गुणगान गाना चाहिए। जब आपके पास क्षमता है बोलने की तो आप बोलते क्यों नहीं हो भगवान के विषय में? जब आप जानते हो कि कृष्ण भगवान है तो ये बात आप औरों को क्यों नहीं बताते कि कृष्ण भगवान है? जब आप जानते हो कि हरे कृष्ण महामंत्र यही एक उपाय है कलयुग में तो आप दूसरों को ये चीज क्यों नहीं बताते? जब आप जानते हो कि भगवद गीता पढ़ने से ही तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है, भगवान की भक्ति से ही जीवन सफल हो सकता है, अगर ये बात अगर आप जानते हो तो आप ये दूसरों को क्यों नहीं बताते? किसी व्यक्ति को उसके जीवन में सफल नहीं होने देना ये भी एक प्रकार का हिंसा है। अगर आप कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है वो आप उसको सफल नहीं होने दे दें, अर्थात आप उसको कृष्ण भक्ति नहीं दे रहे हो, आप उसको प्रचार नहीं कर रहे हो, तो एक प्रकार से हिंसा है ये। क्योंकि अगर वो आप कृष्ण भक्ति की बात नहीं सुनेगा तो वो क्या करेगा, वो आत्महत्या करेगा। ये सुसाइड वाला जो कॉमन सुसाइड है वो नहीं, जो अपने जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का सदुपयोग नहीं करता वो आत्महत्या कर रहा है, जो मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं करता वो आत्महत्या कर रहा है। जानिया सुनिया विष खाएनु, कौन कौन गाता है जानिया सुनिया विष खाएनु? नहीं नहीं वो तो है लेकिन जानिया सुनिया विष खाएनु, लेकिन वो शब्द वो लाइन किसके लिए गाया गया है? क्या कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिए। अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है और आप राधा कृष्ण का भजन कीर्तन या उनका गुणगान नहीं करते तो जानिया सुनिए, जानबूझकर क्या खाते हो आप, विष खा रहे, जानबूझकर विष खा रहे, सो डेंजरस, जानबूझकर विष खा रहे आप, वेरी डेंजरस। तो भंवरे बोलते हैं तो ये हमें सिखाते हैं कि हमें कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, हमेशा कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। और मयूर नाच रहे थे और बता रहे थे ये कृष्ण बलराम जी को क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि कृष्ण, हे प्रभु आपके स्वागत में पुष्पों से लचे हुए जो वृक्ष है वो झुक रहे हैं, भंवरे गीत गा रहे हैं आपके गुणगान गा रहे हैं, और मयूर नाच रहे हैं आपके आनंद, आपके आने से वो आनंदित होकर आपका स्वागत कर रहे हैं, आप हमारे पास आइए, आप हमारे पास आइए। देखा है नर्तन करते हुए मयूर को, देखा है कभी आप, देखा है और किसी ने देखा है नर्तन करता हुआ मयूर, जो जो पिकॉक होता है वो नाच रहा हो ऐसा, हाँ तो ऐसा। तो जनरली माना जाता है कि ये हाउ यू से, ये वैष्णव का स्वभाव है कि वो भगवान का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते, हमेशा तैयार रहते हैं, वो चाहते हैं कि भगवान हमें देखे, कृष्ण हमें देखे। तो हमें हमेशा भगवान को स्वागत करना चाहिए, जैसे सोलह माला का जप करना। तो ये सोलह माला का जप जो करना होता है वो एक रूप से आप क्या कर रहे हो, भगवान को स्वागत कर रहे हो, भगवान को आप बुला रहे हो, हे कृष्णा प्लीज कम, हे कृष्णा प्लीज कम, राइट। और फिर जब कृष्ण आते हैं आपके प्रयास से, आप सोलह माला करते हो, भगवान आपके प्रयास से जब आते हैं और तब आप फिर और सब काम करते हो, सही बात है। एक्चुअली ये सुनने में थोड़ा कठिन है लेकिन ये सत्य भी है कि आप सोलह माला जप करते हो लेकिन सोलह माला जप ध्यान से नहीं करते। सोचो ये समस्या क्या क्या कहेंगे आप, आपको समझ लो कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, किसी को है समझ लो एक्स वाई जेड को भयानक बीमारी है, आजकल वो स्वाइन फ्लू फैल रहा है गुजरात में, तो भयानक बीमारी है, दो दिन तीन दिन आदमी मर जाता है। अगर ऐसी बीमारी किसी को है और उसमें किसी ने आपको कहा है कि ये दवा काम करती है इससे आदमी ठीक हो जाता है, अब वही दवा जब आप ले रहे हो तो उस दवा दवाई लेने के प्रति आपका सावधानी नहीं है, आप टाइम से लेते नहीं उसको, तो क्या माना जाए, आप कितना मूर्ख आदमी है वो। तो इस तरह से हमारी बीमारी बहुत गहरी है और चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये दवाई दी है हरिनाम रूपी, अब यह हरिनाम रूपी दवाई के समय ही हम बेपरवाह लापरवाह रहते हैं, बाकी सब काम ढंग से करते हैं, हरिनाम के समय लापरवाह रहते हैं, ये बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात हमारे कष्ट की बात ये भी है कि कई बार हम नियम से सोलह माला जप नहीं करते, कई बार मैंने देखा कुछ दीक्षित भक्त भी करते हैं ऐसा, सोलह माला के बदले चौदह माला या आठ माला करेगा, दस माला करेगा, और हिसाब तो किसी को देना नहीं होता है क्योंकि उनको ऐसा है उन भक्तों को या अज्ञानता में कि भगवान तो कुछ पता ही नहीं पड़ता, कृष्ण तो अपने मंदिर में बैठे है ना, वो भला क्या देखेंगे। और मैं भी स्मार्ट हूँ, मैंने सीसीटीवी लगाया ही नहीं कहीं पर, क्या देखेंगे भगवान है ना। तो वो उसकी समस्या है, उसको ये नहीं पता कि भगवान तो क्या, गुरु भी देख रहे हैं तुम्हें, प्रभुपाद भी देख रहे हैं तुम्हें, ये कैसे संभव हो सकता है कि आप एक बार वचन देते हो भगवान को गुरु को कि आप 16 माला का जप करोगे और फिर आप 16 माला के बदले 14 या 20 माला 10 माला करते हो, 10 माला करके और फिर आप छोड़ देते हो। सो इरिस्पॉन्सिबल। खास करके जो भक्तों ने दीक्षा लिया और 16 माला नहीं करते, उन लोग को तो डूब मरना चाहिए। दिस इज वेरी बैड। इसलिए हमें भगवान का स्वागत करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए, प्रभु आप आइए। सब जानते हैं, भक्त लोग फिर भी नहीं करते, ये यही समस्या है। जानते हैं, सुन बैठे, पढ़ बैठे, लेकिन इसका आचरण नहीं करते। और गोपियों का चिंतन करके भगवान बोले कि हिरणी जो है, हिरणे, वो बड़े प्रेम से आपकी ओर देख रहे हैं, जैसे गोपियां आपको देखती है। तो भगवान भूल गए थे एक बार कि वो बलराम जी से बात कर रहे हैं, अपने बड़े भाई को थोड़ी कोई कहेगा गोपियां जैसे देखती है, लेकिन भगवान बता रहे थे क्योंकि उनके माइंड में गोपियों का चिंतन हो रहा था। तो भगवान ने बताया, उनका उदाहरण देते जैसे गोपियां आपको देखती है, लेकिन ये देखना भी भगवान, अब सोचिए इसमें दो चीज़ें, भगवान आपको देख रहे हैं और आप भगवान को। प्रभुपाद क्या बताए, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, व्हाट ही सेड, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट देन ऐसा कार्य करो कि कृष्ण आपको देखने के लिए उनका इच्छा हो। टू वे समबडी से दैट एक्ट लाइक दैट दैट कृष्ण इज ऑलरेडी वॉचिंग यू, एंड समबडी वुड से दैट एक्ट द वे दैट कृष्ण हैज टू कम टू सी यू। भगवान को आपको देखना है। शिष्य को अपने गुरु पर गर्व होता है ना, मेरे गुरु बहुत महान है, मेरे गुरु बहुत महान है, सो नाइस, सो नाइस, मेरे गुरु जी बहुत महान है ना, कई बार बोलते हैं मेरे गुरु बहुत महान है, लेकिन क्या गुरु को भी ऐसा गर्व होता है ऐसा बोलने में, ये मेरा शिष्य, मैं इसका शिष्य हूँ। क्या गुरु को कभी ऐसा गर्व होता है? ऐसा शिष्य बनने का प्रयास करो कि गुरु को गर्व हो कि हाँ मैं इसका शिष्य हूँ, मैं ये इसका गुरु हूँ, इस प्रकार का शिष्य बनने का, दैट इज द डिवोटी स्टाइल, ऐसा सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए विवश हो जाए, दिस रास्कल इज डूइंग समथिंग वेरी नाइस, प्रभुपाद सेड दिस थिंग। प्रभुपाद कहते थे कि मैं तो मरने ही वाला था हार्ट अटैक के कारण समुंदर में, लेकिन फिर भगवान ने सोचा कि दिस रास्कल इज डूइंग समथिंग गुड, तो इसलिए उन्होंने हेल्प किया। ऑफ कोर्स दैट इज हिज ह्यूमिलिटी, प्रभुपाद का ही विनम्रता है, लेकिन इस प्रकार का भावना होना चाहिए कि हम ऐसा कार्य करें कि गुरु हम पर गर्व ले, भगवान पर, भगवान हम पर गर्व ले। देखने से ही आप देखो, ये जब दृष्टि से बहुत चीज़ होती है, भगवान के भक्तों की दृष्टि और उनके वचन बहुत ही सौम्य होते हैं, बहुत ही सौम्य। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि दृष्टि से आपके हृदय की बात पता पड़ जाती है, जिस तरह से आप देखते हो ना, अगर समझ लो किसी को हम कुछ कह रहे कि प्रभु ये करो तो वो नीचे देखता है, इसका अर्थ है कि इज नॉट विलिंग टू डू दैट, उसको वो कार्य नहीं करना है। फिर एक्सक्यूज तो बाद में आती है, लेकिन पहले तो वो एक बार आंखों से ही बता देता है कि उसको कार्य नहीं करना है। तो दृष्टि बहुत सारा काम करती है। ब्रह्मा जी को चार कुमारों को बोला तुम प्रजापति करो, तो कुमारों ने ना बोले हम प्रजापति नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो, बोले नहीं कुछ एक शब्द, लेकिन क्रोधित हो गए, इतने उनकी दृष्टि में बड़ा क्रोध था। तो क्रोध से क्या हो गया, कौन प्रकट हुआ, रुद्र प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए दृष्टि से, क्रोध में दृष्टि वहाँ तो क्रोध से शिव जी प्रकट हुए। शिव जी को बोला प्रजापति, हाँ हाँ मैं तो तैयार हूँ प्रजापति, है नहीं प्रजापति शुरू भी किया उन्होंने, तो वो सब यूजलेस सब डाकिन और भूत पिशाच सब प्रकट होने लगे था। से ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक बार देखे तो सही कि प्रजापति कैसी हो रही है, जाके देखा, अरे क्या कर रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम प्रजापति मत करो, प्रजापति मत करो, स्टॉप इट, यू नो नहीं चाहिए तुम्हारे, अभी तो मैं सर्जन कर रहा हूँ, तुम तो अभी विसर्जन का प्लान बना रहे हो, प्रजापति मत करो, यू नो बराबर। तो क्या करे शिव जी ने कहा, तो फिर क्या करे, तपस्या करो, पर तपस्या तो कोई जीवन नहीं होता तपस्या के बिना, तो और कुछ बताओ, तो ठीक है अभी तपस्या करो, जब आवश्यकता होगी तब प्रलय के लिए बुला लेंगे, विनाश होगा विनाश करना होगा तब आपको बुला लेंगे, तब तक आप तपस्या करो। तो दृष्टि से मनोभाव प्रकट होते हैं, यू नो जैसे कौन वो भृगु मुनि गए थे, किसके पास गए थे, ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी का ऐसा इच्छा था कि वो उनको आदर दे, उसने आदर नहीं दिया तो ब्रह्मा जी अप्रसन्न हुए थे, है ना, ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया था, तो उनकी दृष्टि से ये प्रकट हो रहा था। भगवान अपनी दृष्टि से पूरी सृष्टि का सर्जन करते हैं, अब सोचो दृष्टि में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसमें कोई चिंता कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दृष्टि से सर्जन करना, कोई ये मछलियां अपने बच्चों का पालन करते हैं दृष्टि से, कछुआ अपने गर्भ का सिंचन करता है ध्यान से, बच्चों का अंडों का सिंचन करता है ध्यान से, ध्यान लगा करके सोचता है और वहाँ पर बच्चे जो उनका जो अंडा होता है बच्चे उसका पालन पोषण होता है सोचने से, मछली देखने से देख करके, और पंछी जो होते हैं वो अपनी क्या बोलते हैं उसके पंखे उसकी जो विंग्स है पंख है वो पंख उसको स्पर्श करके, तो अगर ये साधारण पशु अगर ये कर सकते हैं चिंतन करके सर्जन होता है तो क्या भगवान दृष्टिपात करके सर्जन नहीं कर सकते। लेकिन अगर दृष्टिपात करके सारे ब्रह्मांड का सर्जन अगर भगवान कर सकते हैं तो ऐसे भगवान क्या नहीं कर सकते दृष्टि से, है ना, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो दृष्टि से, इसलिए हमें भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए, यू नो जब आप भगवान के लिए दर्शन के लिए जाते हो तो दोनों साइड होता है ना देखना, ऐसा थोड़ी होता है कि आप ही देखते हो, वो भी तो देखते हैं ना आपको, है ना, आंखें तो उनके पास भी है तो वो भी देखते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है शायद आप कभी नहीं देखते हो उनको, है ना, लेकिन वो तो बिल्कुल देखते आपको, वो तो बिल्कुल देखते आपको, ये आया था वो बिल्कुल देखते हैं भगवान, बिल्कुल देखते, और देखते ही नहीं केवल, जब वो देखते हैं तो आपके जितने भी कलुषित जो विचार है कलुषित आपकी जो इम्प्योरिटीज जो है उसको साफ कर देते हैं। जो व्यक्ति सृष्टि का सर्जन करते हैं दृष्टि मात्र से, अगर जो भक्ति के भाव से उनके सामने जाएगा तो भगवान उसको देखेंगे नहीं प्यार से, भगवान बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत दया से देखते हैं, सेम वैष्णव का भी ये स्वभाव है, बहुत प्यार से देखते हैं, वैष्णव की आंखों में और उनके वचनों में प्रेम और करुणा होती है, ये वैष्णव का एक लक्षण है। कहा जाता है कि संसार में भोजन जल और शब्द ये तीन अलंकार माने जाते हैं रत्न, तो प्रभुपाद की आंखों में बड़ी तीव्र करुणा थी, कैसी जैसे वो दृष्टिपात, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको फुल परमिशन दिया था, क्या परमिशन दिया था, आप जिसको कृष्ण भक्ति देना चाहोगे वो भक्त बन जाएगा। सोचिए, श्रील प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। श्रील प्रभुपाद वन मैन आर्मी थे, अपनी पुस्तक लिखते थे खुद, छपवाने खुद जाते थे, फिर हावी से उसका प्रूफ रीडिंग खुद करते थे, उसको किताब बांटते भी खुद थे, अकेले सब करते थे। जैसे प्रभुपाद के विषय में कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद को एक बार भक्तिदान सरस्वती महाराज ने, उनके भक्तिदान सरस्वती के कुछ शिष्य ने प्रभुपाद के जो गुरुजी थे भक्तिदान सरस्वती, उनको ये सुझाव दिया था कि अभय बाबू जो है वो मैनेजमेंट में बड़े ही एक्सपर्ट है, इसलिए उनको बॉम्बे टेंपल का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज ने उनको ना बोल दिया। भक्तिदान सरस्वती ने कहा कि ये समय, अपने समय आने पर खुद ना खुद अपना काम कर लेगा, यू नो, सो डोंट डिस्टर्ब इट। जब भक्तिदान सरस्वती महाराज एक बार ब्रजमंडल में थे तो दो ऑप्शन थे भक्तों के लिए, या तो आप ब्रजमंडल परिक्रमा में जाओ या तो भक्तिदान सरस्वती महाराज का लेक्चर सुनो। ऐसा महाराज ने कहा था कि जो जाना चाहते जा सकते, जो बैठना चाहे बैठ सकते परिक्रमा में। तो कुछ शिष्यों को छोड़ करके कहा जाता है कि अंत में केवल प्रभुपाद बचे थे, अभय चरण अरविंद, ये उस समय अभय बाबू थे, तो वो सुनने के लिए बैठे, बाकी ज़्यादातर भक्त लोग चले गए। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज ने इस नोटिस किया, जैसे गुरु कई बार नोटिस करते हैं भक्तों को, बोलते नहीं है कुछ। आध्यात्मिक गुरु के लिए जरूरी नहीं कि सब चीज़ आपके उनके मन में जो है सब बताए आपको, वो तो गुरु है ना, उनका काम है आपका उद्धार करना, तो वो नोटिस करते हैं आपका अप्रोच कैसा है, आपका हृदय कैसा है, आपका विचार कैसा है, ये सब नोटिस करते, उस हिसाब से आप पर करुणा करते, उस हिसाब से आप पर कृपा करते। जैसे प्रभुपाद को देखा कि ये मेरे में मुझे सुनने के लिए बड़ा ही व्याकुल है, वेरी ईगर, उनको मेरी बात सुनना बड़ा पसंद है, तो ये अंडरस्टूड कि ये काम, ये मेरा काम करेगा। प्रभुपाद महाराज अंडरस्टूड कि ये व्यक्ति मेरा काम करेगा, एंड एक्चुअली ही डिड इट। इसलिए प्रभुपाद का व्यास पूजा आ रहा है अभी नेक्स्ट वीक, तो आइडियली सभी भक्तों को प्रभुपाद का व्यास पूजा ऑफरिंग देना चाहिए। अगर आपको बोलने का अवसर नहीं मिलता है तो आप लिख के प्रभुपाद को दे सकते हो, और हर साल ऑफरिंग बुक पब्लिश होती है तो उसमें आप भेज भी सकते हो, लेकिन प्रभुपाद का गुणगान गाना चाहिए। यह हर एक भक्त, हर एक शिष्य का प्राइम नेसेसिटी है। इसलिए प्रभुपाद के विषय में हमारा जो ग्रैटिट्यूड है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे कल मैं किसी को बता रहा था, कहीं किसी पुस्तक में पढ़ा कि प्रभुपाद को किसी भक्त ने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आप जब फिजिकली आपके यहाँ पर हो, है ना, तब तो आप हमारी प्रश्नों का सारी समस्या आप सुना देते हो, सुलझा देते हो, लेकिन जब आप यहाँ पर नहीं होंगे फिजिकली, और बाद में अगर हमें कोई समस्या आएगी तो हम किसके पास जाएं? तो एक बार तो प्रभुपाद ने बता दिया उनको, जैसे ये प्रश्न पूछा तो प्रभुपाद ने कहा कि बलराम जी के पास जाओ, बलराम जी के पास जाओ, बलराम जी आपकी सारी समस्या, जब मैं नहीं होंगे तो बलराम जी के पास जाओ, ही विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ये बुरीजन प्रभु के प्रवचन में कहीं था, बुरीजन प्रभु से दिखते हैं, बुरीजन प्रभु ने ऐसा भी कहा कि मैंने ये अनुभव किया है कि प्रभु बलराम जी सुधार देते समस्या। सो इसलिए प्रभुपाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और प्रभुपाद का एक बड़ा तीव्र इच्छा है हम सब भक्तों से, एक बड़ा तीव्र इच्छा है, क्या अच्छे भक्त बनो, ये बहुत तीव्र इच्छा है। आप चाहते हो अच्छे भक्त बनने के लिए या फिर एक सोशल डिवोटी बनना चाहते हो? अच्छे भक्त बनना चाहते हो या फिर केवल एक इस्कॉन को एक क्लब की भांति लेना चाहते हो, या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो जिससे आप ज़्यादा धन कमा सको, ज़्यादा प्रसिद्धि आपको मिले, ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं आप उसको, सुंदर हो ज़्यादा, तो भौतिक प्रलोभन क्या चाहते हैं आप? अच्छे भक्त बनना चाहते हो? अच्छे भक्त का अर्थ क्या होता है वहाँ हमने आपको पहले बता दिया, तुरंत अभी सुनी चाहिए ना, ये अच्छे भक्त के लक्षण। अगर आप चाहते हो कि आपका हरिनाम इम्प्रूव हो तो ये तुरंतपी का पालन शुरू कीजिए। अच्छा, आपका इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली होगा, आपका हरिनाम इम्प्रूव होगा, है ना। तुनादपि सुनी चाहिए ना, मैं बता रहा था आपको, सुनी चाहिए ना। सहनशील, सहनशील बनो। अमानी ना शब्द का क्या अर्थ है? मान की अपेक्षा मत रखो। प्रभु ये ऐसा कठिन कार्य चैतन्य महाप्रभु आदेश देते ही क्यों है? क्योंकि हम सिर से लेके पांव तक उल्टे हैं पूरे। जो सही बात होती है वो हमें उल्टी लगती है। अमानी ना, मान की आशा मत रखो और मान देना, सबको आदर दो। मैं अभी पढ़ रहा था कहीं पर, कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, एक चीज संभाल के रखना, एक चीज इट विल हेल्प यू अ लॉट। एक चीज, किसी कनिष्ठ भक्त का भी ईर्ष्या मत करना। कनिष्ठ भक्त का मैं बता रहा हूं, कनिष्ठ भक्त का भी ईर्ष्या मत करना। ये चीज आप संभाल करो। आई टेल यू इट विल हेल्प यू अ लॉट। सुनने में थोड़ा हो सकता है हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन हो जाता है। किसी के कनिष्ठ भक्त का भी निंदा मत करो। आप सोचो, कनिष्ठ का बता रहा हूँ, मध्यम उत्तम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कनिष्ठ भक्त का भी ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो। वो गोपाल चापाल था ना, उसने श्रीवास ठाकुर का ईर्ष्या किया था। गोपाल चापाल, उसके सारे शरीर में लेप्रसी हो गया था, पूरा कीड़े कीड़े भरे थे पूरे बॉडी में, और वो कीड़े उसको निरंतर काट रहे थे। और वो जो रोग होता है वो रोग इन्फेक्शन वाला होता है, इसे गांव से उसको बाहर निकाल दिया था। और गांव में गंगा के तट पे जाके पेड़ के नीचे रहते थे गोपाल चापाल। उनका दोष क्या था? श्रीवास ठाकुर का ईर्ष्या किया था उन्होंने। और प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जो भक्त का कनिष्ठ भक्त भी हो तो भी अगर द्वेष या ईर्ष्या करता है ना, उस भक्त को इस प्रकार का कष्ट मिलता है और वो चाहे तो मर भी नहीं सकता। अगर मृत्यु चाहे तो मृत्यु भी उसको नहीं मिलेगी। अगर भाग्य में होगी तो भगवान हटा देंगे मृत्यु उसके भाग्य में से, उसको कष्ट दिया जाए। जब महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु को कहा कि मुझे रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, महाप्रभु ना बोल दिया। आप सोचो, चैतन्य महाप्रभु भी कृपा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुमने किसी वैष्णव का द्वेष ईर्ष्या किया। आप समझो इस विषय की गंभीरता। इसलिए एक गलती से भी कभी भी किसी कनिष्ठ भक्त का भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं करना। अगर नहीं हो सकता है तो प्रयास करो, ये होगा तो अच्छे भक्त बन पाएंगे आप। श्री प्रभुपाद आपसे प्रसन्न होंगे, श्री प्रभुपाद प्रसन्न होंगे तो फिर आपको और क्या चाहिए ना। तो आप प्रभुपाद जन्माष्टमी आ रहा है नेक्स्ट ट्यूसडे को सुबह 4:30 बजे मंदिर में मंगला आरती होगा। फिर सब भक्तों को अपना अपना जो सेवा अलॉट किया गया है वो सेवा कीजिए। किसी भक्त के पास अभी कोई सेवा नहीं है और अगर वो चाहता है मंदिर में सेवा देने के लिए तो वो मंदिर हमारा संपर्क कर सकते हैं। मंदिर में विष्णु नाम प्रभु या मदन मोहन प्रभु का संपर्क करो, और बताओ कि हम क्या सेवा कर सकते हैं जन्माष्टमी को लेकर के, अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करो। ऐसा नहीं कि हमें जो रुचि कर लगता है वो सेवा, ऐसे नहीं, अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करो। आप कहेंगे भाई हम तो निकम्मे हैं, हमें बिल्कुल योग्य नहीं, ये बहाना है। जो आप कर सकते हो पूरा सहाय करो भगवान की सेवा में। तो आप जन्माष्टमी का दिन पूरा मंदिर में सेवा दीजिए, सुबह भागवतम क्लास होगा, पूरा दिन कीर्तन रहेगा रात तक, शाम को 6 बजे पंडाल में प्रोग्राम होंगे, अलग अलग प्रोग्राम प्रवचन देंगे यशवंत नंदन प्रभु, और फिर रात को 11:30 अभिषेक होता है, तो अभिषेक में आप सब आइए और अपने मित्र को भी बुलाइए, अपने फ्रेंड्स सबको बुलाइए, जिस जब आएंगे दर्शन करेंगे वो भी चलेगा, जैसे आप हो सकते बुलाइए, औरों को जोड़िए। और दूसरे दिन श्री प्रभुपाद का व्यास पूजा है, तो उसमें कई बार देखा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन भक्त इतना सेवा करते हैं कि उनका बॉडी का कैपेसिटी नहीं होता दूसरे दिन आए। लेकिन साल में 2 ही ऐसे दिन है कि जिसमें हमारा थोड़ा श्रम ज़्यादा करना पड़ता है, स्ट्रगल, तो थोड़ा बॉडी को स्ट्रेन दे करके भी दोपहर तक का ही बात है। जब प्रभुपाद का फीस्ट हो जाता है सब भक्तों को, उसके बाद तो आप घर पे जाकर रेस्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा मेहनत करके 2 दिन आप थोड़ा सेवा कर लो टेंपल को, आप सब भक्तों की सेवा की आवश्यकता है और आपको टेंपल की आवश्यकता है, तो आप दोनों ही रूप से भगवान की सेवा करो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जाए, श्री प्रभुपाद व्यास पूजा की जाए। हरे कृष्णा।